Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhakti Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. इस उपनिषद के छह प्रकरणों में से पंचम प्रकरण का विचार हो रहा है। पंचम प्रकरण में सत्यकाम सैभ्य के प्रश्न का उत्तर आचार्य पिप्पलाद जी दे रहे हैं। सत्यकाम सैभ्य का प्रश्न है आचार्य पिप्पलाद जी के प्रति कि जो जिज्ञासु जीवन पर्यंत ओंकार की उपासना करता हो उसे अनेकों प्रकार के फलों में से कौन सा फल प्राप्त होगा। ये जो सत्यकाम का प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए द्वितीय कंडिका में आचार्य पिप्पलाद जी ने कहा कि हे सत्यकाम, ये जो परब्रह्म और अपर ब्रह्म है इन दोनों का भी प्रतीक है ओंकार। तो ओंकार रूपी प्रतीक में उपासक उस ओंकार रूपी प्रतीक को देख करके किसका स्मरण करना चाहता है, चिंतन करना चाहता है। ये उपासक को निर्धारित करना होता है और वो उसका निर्धारण ये निश्चित करेगा पहले कि हमें किसकी प्राप्ति करनी है। अपर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं या परब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्वयं को पहले अपने उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। तब गंतव्य का निर्धारण स्वयं करेंगे तो फिर गंतव्य तक पहुंचाने वाले जो साधन हैं वे आपके सहायक बन जाते हैं। जिस किसी भी साधन की सहायता से गंतव्य को पाया जा सकता है। तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति मात्र यदि उद्देश्य है तो अपर ब्रह्म का स्मारक होगा ओंकार, और ओंकार में अपर ब्रह्म का चिंतन किया जाएगा। ओम इत्याकारक ध्वनि का अनुसंधान करते करते मन को अपर ब्रह्म का शास्त्र ने जैसा स्वरूप बताया है उस स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि ओंकार को श्रुति कहती है कि अपर ब्रह्म का भी वह प्रतीक है, यानी स्मारक है, स्मरण कराने वाला है। प्रतीक शब्द का अर्थ होता है स्मारक। और जो परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, जिसकी परब्रह्म की प्राप्ति ही उद्देश्य है, लक्ष्य है, तो ओंकार प्रतीक को परब्रह्म के दृष्टि से वह ग्रहण करेगा, ओंकार की सहायता लेगा ओंकार उपासना की अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ओंकार को आलंबन बना करके, साधन बना करके चिंतन करेगा जिसको प्राप्त करना चाहता है उसका। और ये नियम होता है कि आप जिसका चिंतन करते हैं, धीरे 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 आपका चिंतन आपको आपके चिंतनीय के गुण दोषों से युक्त करता है, और ये चिंतन जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, एक समय ये होगा कि चिंतक अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से भूल जाएगा और चिंतनीय का स्वरूप ही उसके मैं के रूप में अभिव्यक्त होगा। ये अहंग्रह उपासना की परिपक्व अवस्था मानी जाती है। तो परब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो परब्रह्म का ओंकार में ध्यान करते 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 वह ध्यान जब परिपक्व होगा तो ध्याता अपने आप को भूल जाएगा, ध्यान को भूल जाएगा, और ध्येय जो परब्रह्म है वह परब्रह्म ही उसके बुद्धि में मैं के रूप में निश्चित होगा, परब्रह्म में ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी ध्येय में। ये ध्यान की परिपक्व अवस्था है। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम है समाधि, और समाधि में क्या होता है तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम के अनुसार दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है। और मुंडक उपनिषद का यह पंचम प्रकरण तो क्या नाम केनोपनिषद ये प्रश्नोपनिषद का ये पंचम प्रकरण तो मुंडक अंतर्गत जो ओम इत्येवम् ध्यायत आत्मानम् इत्यादि मंत्रों की व्याख्या है ना, वहां पर ओंकार प्रतीक का आलम्बन लेकर के आत्मा शब्दित प्रकृत जो अक्षर है सत्य पुरुष नामक यानी परब्रह्म, उसका ग्रहण किया है और परब्रह्म का चिंतन ओंकार का आलम्बन लेकर के करने के लिए कहा गया है। तो जो मूल ग्रंथ है, मंत्र है मुंडक, उसमें जब ओंकार की सहायता से ओंकार रूप आलम्बन में परब्रह्म का ध्यान बताया तो मुख्य रूप से यहां पर भी परब्रह्म का ही ध्यान बताया जा रहा है, क्योंकि पराविद्या का व्याख्यान हो रहा है ना। तो जो उत्तम अधिकारी हैं उनको तो पराविद्या तत्काल प्राप्त हो जाती है, इसी शरीर में निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार के रूप में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा, इसे चतुर्थ प्रकरण में बताया गया। और जिनके अंदर साधन चतुष्टय की न्यूनता है उन्हें भी मुक्त होना है, परब्रह्म को प्राप्त करना है, पराविद्या प्राप्त करनी है। लेकिन साधन चतुष्टय की न्यूनता ये चित्त में टिकने नहीं देती, पराविद्या को अहम ब्रह्मास्मि स्मृति को उत्पन्न ही नहीं होने देती, और उत्पन्न हो जाए तो स्थिर नहीं होने देती, दृढ़ नहीं होने देती। इसके लिए फिर साधन बताया जा रहा है क्रम मुक्ति का। जो मंद अधिकारी हैं वह ओंकार में परब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से पराविद्या प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ये दिखाने के लिए मुख्य रूप से यह प्रकरण है। इसलिए अपर ब्रह्म की प्राप्ति एक प्रकार से एक पड़ाव है बीच में, जिसका गंतव्य अत्यधिक दूर है, एक दिन में नहीं पहुंच सकता गंतव्य तक, तो बीच में एक रात्रि विश्राम करना होता है उसे। वो विश्राम करने के लिए फिर अपने योग्य स्थान देखेगा, न उसे पड़ाव कहा जाता है, और वहां रुक करके सुबह उठ करके फिर वहीं का निवासी बनकर के नहीं रहेगा, आगे की यात्रा करेगा। ऐसे अपर ब्रह्म की प्राप्ति मात्र उद्देश्य यहां नहीं है, ब्रह्मलोक में जाना मात्र। ब्रह्मलोक में जाकर के परब्रह्म की प्राप्ति का साधन भूता पराविद्या प्राप्त करना ये उद्देश्य है। इसलिए पराविद्या की प्राप्ति ब्रह्मलोक में होगी और फिर मुक्त होगा, तो इसे कहा जाता है क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति की साधन के रूप में ओंकार उपासना यहां पर बताई जा रही है पंचम प्रकरण में, क्योंकि मुंडक उपनिषद में ऐसा ही कहा गया है, क्रम मुक्ति की साधन भूत यह ओंकार उपासना है। ये नहीं कि केवल ब्रह्मलोक में जा करके वहां से घूमघाम करके फिर मृत्यु लोक में आ जाए, इसके लिए ओंकार उपासना नहीं, उसके लिए तो दूसरी दूसरी उपासनाएं हैं। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, इसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ है ओंकार। तो ब्रह्म संस्थ यानी ओंकार उपासक, वो यानी छांदोग्य उपनिषद में है। तो ओंकार उपासक अमृतत्व को प्राप्त करता है, वह अमृतत्व है मोक्ष। और वो कैसे प्राप्त होगा उसे, तो ब्रह्मलोक में जाकर के पराविद्या प्राप्त होगी और वहां से वह पराविद्या प्राप्त करके मुक्त होगा, मोक्ष को पाएगा। बीच में एक पड़ाव के रूप में ब्रह्मलोक में उसे रुकना पड़ता है, ब्रह्म ज्ञान तो होगा जाने के बाद ब्रह्मा जी के कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करके ही, और फिर जीवन मुक्त होकर के रहेगा, लेकिन वहां रुकना होगा जब तक ब्रह्मा जी जिंदे हैं तब तक। और ब्रह्मा जी कब तक जिंदे रहते हैं, ब्रह्मा जी की मृत्यु की उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है विदेह मुक्ति के लिए, बाकी जीवन मुक्ति तो रहती है। और ब्रह्मा जी रहते हैं, उनकी आयु है एक कल्प की, जब उनकी आयु समाप्त होगी तो ये कल्प समाप्त हो जाएगा, महाप्रलय होगा अज्ञानी के लिए, और ज्ञानियों के लिए अत्यंतिक प्रलय होगा, फिर विदेह मुक्ति उनकी होगी। तो वो जो क्रम मुक्ति की साधन भूत ओंकार की उपासना इस प्रकरण में बताई जा रही है, उसका विधान तो होगा पंचम मंत्र में, यहां पर इस प्रकरण में। उससे पहले तीसरा और चौथा ये जो दो मंत्र हैं, यह समस्त ओंकार की उपासना जो क्रम मुक्ति रूप फल की प्रापक है, परब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली है ब्रह्मलोक में पहुंचा करके, वह उपासना इस प्रकरण में विधेय साधन है। और जिसका विधान करना होता है उसकी प्रशंसा की जाती है विधेय अर्थ की, प्रशंसक ग्रंथों को कहा जाता है अर्थवाद। मीमांसकों ने वेद वाक्यों के पांच प्रकार माने हैं, पांच प्रकार के वेद वाक्य होते हैं, विधि निषेध मंत्र नामधेय और अर्थवाद, ऐसे पांच प्रकार माने जाते हैं किसके, वेद वाक्यों के। जितने वेद वाक्य हैं वो इन पांच प्रकारों में से कोई न कोई प्रकार वाले होंगे। जैसे अहरह संध्याम उपासित स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यों को कहा जाता है विधि वाक्य। और मां हिंसा सर्वाभूतानी स्वाध्यायान मां प्रमाद ये वाक्य है प्रतिषेध वाक्य निषेध वाक्य। करो करके कहने वाले विधि वाक्य, मत करो कहने वाले निषेध वाक्य, और मंत्र वो होते हैं कर्म के अंगभूत देवतादि के स्वरूप का वर्णन करने वाले या अनुष्ठेय अर्थ का स्मरण कराने वाले, उनको मंत्र कहा जाता है। और नामधेय होते हैं नाम इंद्र इत्यादि जो शब्द हैं वेद में आए हुए, वो नामधेयात्मक वेद हैं। और अर्थवाद माना जाता है प्रशंसा करने वाले या निंदा करने वाले। वेद में दोनों प्रकार के अर्थवाद वाक्य होते हैं, प्रशंसा करने वाले भी होते हैं निंदा करने वाले भी। विधि वाक्य के पास में तो विधि वाक्य के द्वारा जिसका विधान किया जा रहा है उसकी प्रशंसा करने वाले अर्थवाद वाक्य होंगे। और वेद जिस साधन से अपने अधिकारी को निवृत्त करना चाहता है तो उस साधन की अधिकारी के सामने निंदा करता है, ये कहता है कि ये साधन यदि तुम करोगे इसमें प्रवृत्त हो जाओगे तो भविष्य में बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, दुख उपस्थित होगा, बड़ा नुकसान तुम्हारा होगा, ऐसी उस साधन की निंदा की जाती है जिस साधन से अधिकारी को हटाना चाहता। अधिकारी स्वभावतः प्रवृत्त होता है जिस साधन में, लेकिन वो है भविष्य में दुख उपस्थित करने वाला, वो समझ में नहीं आता भावी दुख देने वाला ये साधन है। तो वेद कहता है कि ये साधन मत करो, लेकिन वेद कहे और अधिकारी मान ले ऐसा संभव नहीं होता। बुद्धि में कुतर्क उपस्थित होगा ना, क्यों क्यों न करें, करने से क्या नुकसान होगा, न करने से क्या लाभ होगा, ये सब बुद्धि में उपस्थित होते हैं प्रश्न। तो बताया जाता है यदि करोगे तो भविष्य में इन इन अनर्थों को पाओगे, तो इसलिए उससे वो फिर रुक जाता है। ये निंदा, इसको भी अर्थवाद कहा जाता है। तो इस प्रकरण में तो विधि वाक्य आएगा पंचम कंडिका में, वो ओंकार उपासना का विधान किया जाएगा, समस्त ओंकार की परब्रह्म के दृष्टि से उपासना का विधान करने वाला वाक्य वो इस प्रकरण का मुख्य वाक्य है विधि वाक्य। और उस विधि वाक्य के द्वारा जो विधान हो रहा है समस्त ओंकार की परब्रह्म के दृष्टि से उपासना का, ये हो गई विधेय साधन रूपा उपासना। तो इसकी निंदा होगी कि प्रशंसा होगी, विधेय साधन की तो प्रशंसा और निषेध्य साधन की निंदा की जाती है। तो ये परब्रह्म के दृष्टि से समस्त ओंकार की उपासना का निषेध नहीं है, विधान है, इसलिए विधेय है तो इसकी प्रशंसा होगी। जो मंद अधिकारी हैं उनकी समस्त ओंकार की परब्रह्म के दृष्टि से उपासना रूप साधन में प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए ये बताया जाएगा कि ओंकार की उपासना कितनी महत्वपूर्ण है। उसका महत्व बताना, ये प्रशंसा कहा जाता है। तो ओंकार की उपासना की प्रशंसा करने के लिए यहां तीसरी और चौथी कंडिका है। वो प्रशंसा कैसे होगी? तो ओंकार, समस्त ओंकार की उपासना है क्रम मुक्ति का साधन। ओंकार के दो स्वरूप है, एक समस्त स्वरूप और एक व्यस्त स्वरूप। शिवमेमन स्तोत्र में त्रयम् तीसरो वृत्ति स्त्रीभिरग्ने इत्यादि से ओंकार के दो स्वरूप बताए गए, एक समस्त स्वरूप और एक व्यस्त स्वरूप। और ओंकार के यह व्यस्त स्वरूप तथा समस्त स्वरूप दोनों भी बताते हैं भगवान के स्वरूप को ही, लेकिन व्यस्त स्वरूप से बताया जाएगा एक एक अंश को, और समस्त स्वरूप को बताया जाता है परमात्मा के पूर्ण अंश को। व्यस्त स्वरूप बताता है सोपाधिक स्वरूप को, वह पूर्ण स्वरूप नहीं है, अल्प स्वरूप है। जो सोपाधिक स्वरूप है वो है अल्प स्वरूप, परिच्छिन्न स्वरूप ओंकार का, क्या ओंकार के द्वारा बताया जाने वाला। समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति ओम इति पदम, ऐसा होता है ना कि समस्तम व्यस्तम ओम इति पदम त्वाम गृणाति का अर्थ है आपको बताता है, आपकी स्तुति करता है। व्यस्त ओंकार से भी आपकी स्तुति होती है, समस्त ओंकार का स्वरूप भी आपको बताता है। व्यस्त स्वरूप बताता है भगवान के व्यस्त स्वरूप को। व्यस्त का अर्थ होता है विभक्त, व्यस्त यानी विभक्त। तो भगवान का एक विभक्त स्वरूप है और एक अविभक्त स्वरूप है। विभक्त का अर्थ है भिन्न, भिन्न भिन्न स्वरूप। और भगवान का एक अविभक्त स्वरूप है का अर्थ है अभिन्न स्वरूप है आपसे। विभक्त स्वरूप है सोपाधिक स्वरूप, और वो सोपाधिक स्वरूप परमात्मा भी है और ओंकार की का भी व्यस्त स्वरूप और समस्त स्वरूप दो है। तो परमात्मा के विभक्त स्वरूप को बताएगा ओंकार का विभक्त स्वरूप, और परमात्मा के समस्त स्वरूप को यानी निरुपाधिक स्वरूप को बताएगा ओंकार का समस्त स्वरूप। और यहां पर समस्त स्वरूप को बताया जा रहा है ओंकार के परब्रह्म के आलंबन के रूप में, पांचवी कंडिका में बताया जाएगा। इसलिए ओंकार का जो व्यस्त स्वरूप है वो अलग अलग तीन मात्रा है। एक एक मात्रा को कहा जाएगा ओंकार का व्यस्त स्वरूप। और जैसे मनुष्य का केवल ये शीर इतना ही भाग, शीर और कमर के बीच वाला भाग, फिर कमर से नीचे वाला भाग, ये सब व्यस्त है ना, और तीनों मिलकर के समस्त स्वरूप है मनुष्य का। ऐसे ओंकार के भी तीन स्वरूप, तीन मात्राएं अलग अलग, तीन व्यस्त स्वरूप है। और ओंकार के तीनों मात्रात्मक एक समस्त स्वरूप है ओंकार का। तो जो तीनों मात्रात्मक स्वरूप है, समूहात्मक स्वरूप, उसे कहा जाएगा ओंकार के समस्त, क्या ब्रह्म के समस्त स्वरूप का प्रतीक है वो, समस्त स्वरूप का स्मारक बनेगा, समस्त स्वरूप को बताएगा। और एक एक मात्रा ब्रह्म के एक एक व्यस्त स्वरूप को बताती है।